संत मराल करे कंसोहल तिंजम त्रास मिट्यो दुख कागर कल जुग दुर्ग दूर कर वैखो दर्शन गुरु सगल सुख सागर राम धना श्री मल्ला पहला गगन में थाल रवचंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती धूप मल आन लो पवन शवरो करे सगल बन राय फुलंत ज्योति कैसी आरती होए भव खंडना तेरी आरती अनहता शब्द वाजन तुझेरी रहा सहस तव नयन नन नयन है तोए को सहस मूरते नन एक तोई सहस पद विमल नन एक पद गंध बिन सहस तव गंधेयो चलत मोई सब में ज्योत ज्योत है सोए तिस दे चानन सब में चानन होए गुर साखी ज्योत प्रगट हो ज्योतिष भावे सो आरती होए हर चरण कमल मकरंद लोभित मनो अन दिनो मोहे आही प्यासा कृपा जल दे नानक सारंग को होए जाते तेरे नाम वासा हर चरण कमल मकरंद लोभित मनो अन दिनो मोहे आई प्यासा कृपा जल दे नानक सारंग को होए जाते तेरे नाए वासा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सन्मानयोग गुरु रूप साध संग जीओ कीर्तन सुहेले जी की विचार सिलसिलावार आप सरवण कर रहे हो ते सुहेले जी का यह तीसरा शब्द यह भी साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज का उच्चारण किया है। इसका इतिहासक पिछोकड़ भी है। अक्सर इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि शब्द साहिबा ने जगन्नाथ पुरी उच्चारण किया है और उच्चारण करने का वेला शाम का सी क्योंकि आरती शाम को गायन होती है। संध्या की नितनेम की प्रथा तो बाद सनातन मंदिरों में बकायदा आरती होती है। संस्कृत शब्द है आरत का, कुछ कुर्बान करना निछावर करना सदके करना अपने पूज इष्ट तो कुर्बान करने की एक विधि जो सनातन मत ने अपनाई हुए कि एक थाल में एक दीवा या दस दीवे या इस तो भी बहुत ज्यादा कुछ पुष्प और इस तो इलावा कुछ धन या सोने की मोहर या मोती इत्यादि रख के अपने पूज इष्ट देवते दे अगों आदत का करनी, उस तो सदके करना, उस तो कुर्बान करना। किसी हद तक कुर्बानी का यह संदेश हर कौम विच मौजूद है। मूल गल ते जगत भुल जाता है और उपर लिया मोटिया मोटिया गल्लां नूं जगत पकड़ लैंदा। जैसे इस्लाम ने कुर्बानी की गल नूं पकड़िया ते लखां हाजी रमजान के दिनां विच लखां ही जानवरां की बलि कुर्बानी दे देंदे ने मक्के दे, कोई जिंद कुर्बान करनी है, कोई जानवर कुर्बान करना है। ते कुर्बानी का इस ढंग का मादा उपदेश संदेश समूह धर्मां विच मौजूद है। कुर्बान करना की है, भेंट करना की है, मोटी गल नूं लोगां ने पकड़ लिया, बुनियादी गल भुल गए। सिर दे जो मनुख दे फितूर है वह है अहम भाव अहंकार, इसनों सदके करना है। तो अहंकार वधदा है धन करके, जोगन करके, प्रभुता करके। तो हिंदू धर्म ने तौर तरीका अपनाया भी थाल सोने का होवे, मोती आवन, दीवे भी करीबन करीबन सोने दे या चांदी दे आवन, सोने सोने फुल उस थाल देख पाए हो, यह सब कुछ अपने पूज तो कुर्बान करिए, सदके करिए, निछावर करिए और ऐसा रोज करिए। असी अपने पूज तो यह सब कुछ रोज सदके करिए। तो शाम के वक्त संध्या के वक्त नितनेम के पाठ पूजा तो बाद आरत का भाव आरती करीबन करीबन हर हिंदू मंदिर आती है, अज भी आती है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज की सुरत, आप निर्गुण सरगुण की झलक वेखते हैं, सरगुण निर्गुण की झलक वेखते हैं। इस वास्ते गुरु नानक की सोचनी इस्लाम तो हिंदू जगत तो कुछ न्यारी है। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने तो खुले कह दिता, जब लग खालसा रहे न्यारा तब लग तेज द्यों मैं सारा। इनू किधरे तंग दिली ना समझना। इस्लाम कहिंदा केवल निर्गुण की पूजा करनी है, सरगुण है ही नहीं। ते सनातन मत ने गल अपनाई कि नहीं सरगुण की पूजा करनी है, छड़ो निर्गुण, निर्गुण तक आपे सुरत पहुंच जाएगी। बुनियाद जो दिखाई देता है सरगुण, इतों ही अपनी इबादत बंदना शुरू कर दें। निर्गुण ते सरगुण के झगड़े करके अक्सर इस्लाम ते सनातन विच बहुत वड्डे टकराव भी होए, बहुत वड्डे खून खराबे भी होए। हजारा मंदिर जो बर्बाद किए इस्लाम ने महज इस कारण के सरगुण की पूजा है, असी नहीं बर्दाश्त कर सकते क्यों सरगुण की पूजा है। और सोमनाथ के मंदिर में तो बेशर दफा तबाह किया गया, बर्बाद किया गया, छोटे छोटे मंदिर लुटे गए, ढाए गए, बर्बाद किए गए। कारण सरगुण की पूजा खटकती थी, सरगुण की पूजा इस्लाम में चुभती थी। और निरोल निर्गुण ब्रह्म की पूजा आराधना सनातन मत करने तैयार नहीं थे। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज का जमाना आया ते आप दे ए वचन कि सरगुण का जो गुप्त रूप है वह निर्गुण है, ते निर्गुण का जो प्रगट रूप है वह सरगुण है। शरीर का जो गुप्त हिस्सा है वो आत्मा है, आत्मा का जो प्रगट हिस्सा है वो शरीर है। मकान का जो गुप्त हिस्सा है वो बुनियाद है, ते बुनियाद का जो प्रगट हिस्सा है वो मकान है। जैसे दरख्त का जो गुप्त हिस्सा है वो जड़ां है, ते जड़ां का जो प्रगट हिस्सा है वो दरख्त है। ते साहिबा ने दोहां दी कठी प्रस्ते शुरू की थी। आप दिता सरगुण की सेवा कर लो, निर्गुण का सिमरन कर लो, ना सरगुण तो टुटो ते ना निर्गुण तो। ये चूंकि गल बड़ी न्यारी सी, निराली सी, ते चंगे चंगे आलम इस गल नूं मनदे ने कि गुरु नानक दी ये गल दोवें तबकियां दी समझ विच नहीं आई, क्योंकि दोहां ने वंडियां पाईयां सन। एक ने कसम चुकी सी वी सरगुण दी ही पूजा करनी है, निर्गुण दी नहीं, निर्गुण तक आपे सुरत पहुंचेगा। ते एक ने निर्गुण दी पूजा दा आधार चुन के सरगुण दी पूजा दा इतना खंडन किया कि वो मंदिर ही नेत तो नाबूद कर दिते जिथे सरगुण की पूजा चल रही थी। साहिब गुरु नानक देव जी महाराज का समान, निर्गुण का सिमरन करो, सरगुण की सेवा करो। निर्गुण की सेवा नहीं ते निर्गुण नूं सेवा करन दी कोई है उन्हूं कोई सेवा की लोड़ भी नहीं। निर्गुण है, दिखाई नहीं देता, अति सूक्ष्म बुनियाद। अज का यह जिहड़ा आरती का शब्द है इहदे च परमात्मा के दो रूप सतगुर दसते पैने, निर्गुण सरगुण कबूल करते हैं। गुरु अर्जन देव जी महाराज का भी समान, निर्गुण आप सरगुण भी हो ही, कला धार जिन सगली मोही। निर्गुण भी है, वो सरगुण भी है, और एक बहुत वड्डी सच्चाई गुरु नानक गुरु अर्जन देव जी महाराज ने, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने जगत के सामने रखे। और इस पूर्ण सच्चाई को समझे बिना पूर्ण ब्रह्म नाल जुड़ना भी बहुत औखा है। तो मैं इस पर इस शब्द के अकाल पुरख के दोवों रूपों का जिक्र किया, वो दो रूप। निर्गुण जो सूक्ष्म है, सरगुण जो दिखाई देता है। सरगुण उस परिपूर्ण परमात्मा का झोला है। तो जैसे बंदा वस्त्र बदलता रहता है, ये चोले बदलते रहते, कभी एक पृथ्वी बन गई मिट गई, दूसरी धरती बन गई मिट गई, कोई सूरज चंद तारे बन गए मिट गए, ये उसका झोला है, पुराना हो जाता है, वो नवे पहन लैंदा। धरतियां नवी बनदियां मिटदियां ने पुरानियां, सूरज चंद तारे नवे बनते ने मिटते ने पुराने। लेकिन वो जो सूक्ष्म ब्रह्म है वो नेचल है, अडोल है, अटल है। तो टूटना दोहां नाल नहीं है, दोहां नाल जुड़ना है। सरगुण की सेवा ते निर्गुण का सिमरन। शब्द की कुछ विचार करके मैं फिर इस भाव का थोड़े सामने खुलासा करा कि निर्गुण की सेवा नहीं है सिमरन, ते सरगुण का सिमरन नहीं सेवा। इस गल नूं समझ गए ते गुरमत की समझ आवेगी, वरना नहीं, वरना गुरमत नूं समझना बहुत औखा हो जाएगा। प्रथम आप इस शब्द के अगली अर्थ सरवण करो, ते फिर मैं खुलासा थोड़े सामने करा, क्योंकि शब्द काफी वड्डा है। अगली अर्थ प्रथम आप सरवण करो। गगन में थाल राव चंद दीप पग बने। चूंकि हिंदू जगत सरगुण की पूजा करता है तो साजो समान भी सरगुण विधि का चाहिए। थाल उहदे च दीवे, उहदे च कुछ धन मोती या सोने दीआं मोहरां, पुष्प इत्यादक। और इस तरह अपने इष्ट पूज दे अगों थाल बनांदे ने, भाव सदके होंगे ने, निछावर होंगे ने, कुरबान होंगे ने। आरती का खंडन नहीं मंडन है। पर गजब की गल यह है कि गुरु नानक ने यह आरती ब्रह्मंड की कीती है, किसी देवी देवते भी नहीं, समूह ब्रह्मंड। सियाने कहते ने प्राचीन हिंदी ते बंगला दे महान दार्शनिक शायर रविंद्रनाथ टैगोर गुरु नानक देव जी महाराज के इस शब्द तो बड़े ही प्रभावित सन। और हरिमंदर साहब के इस आरती को गायन करदे आना सुन के रसना च वाह वाह निकल गई, ते ब्रह्मंड की आरती। किसी छोटे देवते दी नहीं, किसी इष्ट दी नहीं, किसी अवतार दी नहीं, किसी संत दी नहीं, इस औरती में समूह ब्रह्मंड आ जाता है। गुरु नानक देव जी महाराज की सोच नहीं कि आपकी इस अगमी सोच तो रविंद्र नाथ टैगोर सदके जाता रहा, कुर्बान जाता रहा। साहब कहते हैं परमात्मा असीम है, तो उस असीम की पूजा किसी असीम समिगरी नाल होगी, सीमत नाल नहीं। गगन में था ते समूह गगन आकाश थाल है। आकाश नू थाल कहना जैसे सारा साजो समान थाल दे विच आउंदा है, ये सब कुछ आकाश दे विच है। आकाश पंजवां तत् है ते बड़ा सिरमौर तत् है। इस्लाम ने चार तत् ही मने ने, पंजवां नहीं मने। हिंदुस्तान के तांत्रिक योगा नू जन्म देने वाले जिन्होंने चार वाक करके आख्या गया, वह भी चार तत्तों नू मनते ने, पंजवें नू नहीं मनते। भई जल है, पृथ्वी है, अग्नि है, वायु है, मनुख नाल आकाश का भी संबंध कोई भी नहीं। इस्लाम भी चार तत्तों नू मनता है, तो हिंदुस्तान का पुराना धर्म जिसने तांत्रिक विद्या नू जन्म दिता, जादू टोणिया नू जन्म दिता, और किसी हद तक हर तरह की खुल शरीरक ते मानसिक नू धर्म का अंग बनाया, इस तरह के चार वाक चार तत्तों नू मनते हैं, पंजवें नू नहीं। गुरबाणी ते हिंदुस्तान के बेशतर ऋषि पंज तत् मनते, तत् पंज ने, ते पंजवां तत् प्रधान है आकाश, क्योंकि सब कुछ आकाश दे विच है, सब कुछ आकाश तो आउंदा है, सब कुछ आकाश दे समा जाता है। आकाश तो मुराद जिसका कोई वजूद नहीं, सुनना। कहते हैं जिस वक्त बंदा निर्विचार हो जाता है, कोई विचार नहीं, कोई फुरने नहीं, कितने समा जाता है, सुन अवस्था दे। ते सुन नू किधरे इंज ना समझ लेना भी कुछ भी नहीं जिथे। सुन समाव अनहद तैनाव, कहन न जाई अचरज विस्मा। हिंदुस्तान में एक सज्जन ने इस गंध का तजर्बा किया। एक बूटा उसने लाया गमले में, ते गमले में जितनी मिट्टी पाई ना उसने तोल के पाई, उसनों बकायदा सिंचया। भई आम धारणा यह है कि पौधा जमीन तो शक्ति लेंदा, जमीन की सतह लेंदा। तीन ने तीन साल बाद बूटा बहुत बड़ा होया उस वड्डे गमले, ते उस सज्जन ने उस मिट्टी नू तोलिया, वो मिट्टी उतनी सी जितनी उसने पाई है। हैरान हो गया फिर इतना वजनी दरख्त इस गमले में कितों आ गया, मिट्टी तो उतनी दी उतनी पई है सारी। अगर मिट्टी चो ही पैदा होंगे, मिट्टी पैदा कर सके सहारा है, पौधा मिट्टी नहीं है। इस तरह उसने सिद्धांत हिंदुस्तान के धार्मिक पुरुषों के सामने रखे। नागपुर में ये सज्जन और उसकी इस सब तो पहली खोज से कहता है सब कुछ सुन दे चवाद आकाश दे चवाद, सब कुछ आकाश के मिट्टी तो सारी की सारी बल गई, पर इतना वजनी बूटा ये खड़ा है, इतने पत्ते इसनों इतने फुल लगे हैं, इतना ही लंबा चौड़ा पसारा है। वरस के उसने हर शक्ति को नापया, आख्या सब कुछ सुन दे चवाद, कि सूरज चंद तारे ग्रह नक्षत्र मनुख पशु पंखी आकाश तो आते हैं आकाश के समा जाते। जे आती है सूरज तो आता, एक दिन सूरज भी मिट जाता है, पृथ्वी मिट जाती है, कुछ भी नहीं, सब कुछ आकाश के समा जाता है, सब कुछ आकाश के चो आता है। इस तरह मूल तत् कुछ मौजूदा जोड़े मनीष ने उन्होंने भी मन लिया आकाश है, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਦੀ ਗਿਆਤ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਤੱਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਚਾਰ ਵਾਕ ਨੇ, ਚਾਰ ਤੱਤ ਮੰਨੇ ਨੇ, ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਚੋਂ ਚੰਦ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਚਾਰ ਤੱਤ ਮੰਨੇ ਨੇ, ਪੰਜਵੇਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਲਪਨਾ ਮਾਤਰ ਹੈ, ਇੰਝ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਖਲਾ ਸੁਣ, ਸਖਤ ਸੁਣ ਦੇ ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਣ ਦੇ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੁਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਰਵਿਚਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਨਹਦ ਦੁਨੀਆਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਝਲਕ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਕੁਝ ਸੁਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸੁਣ ਦੇ ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਣ ਸਮਾਦ ਅਨਹਦ ਤੈਨਾਦ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ। ਹੁਣ ਉਸ ਸੁਣ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਿਆਨ ਕਰੀਏ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ, ਅਖਤ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਅਚਰਜ ਬਿਸਮਾ। ਜਿਸਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਅਤਿਅੰਤ ਕਠਿਨ, ਅਤਿਅੰਤ ਕਠਿਨ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੂਹ ਆਕਾਸ਼ ਇਹ ਵੱਡਾ ਇਹ ਥਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਜਾ ਦੀ ਆਰਤੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਥਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਕਾਸ਼ ਮੂਲ ਹੈ, ਆਕਾਸ਼ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਆਕਾਸ਼ ਪ੍ਰਥਮ ਹੈ। ਤੋ ਖੈਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਗਗਨ ਥਾਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਦੀਵੇ, ਇਹ ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਇਹ ਦੀਵੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਇਸ ਗਗਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਥੇਰਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਤਮਾਮ ਗ੍ਰਹਿ ਨਛੱਤਰ ਤਾਰੇ ਸਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਰਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਦੀ, ਸਮੂਹ ਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਡਲ, ਸਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਮੰਡਲ, ਗ੍ਰਹਿ ਨਛੱਤਰਾਂ ਦਾ ਮੰਡਲ, ਇਹ ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਮੋਤੀ ਜਾਣ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ, ਸਭ ਕੁਛ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਝ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰਦੇ, ਜਬ ਉਹ ਕਰਤ ਕਰਾ ਕਰ ਤਾਰਾ ਪ੍ਰਜਾ ਧਰਤ ਤਬ ਦੇ ਅਪਾਰਾ, ਜਬ ਆ ਕਰਤ ਕਰਮ ਹੋ ਕਬ ਹੋ ਤੁਮੈ ਮਿਲਤ ਦੇਹ ਧਰ ਸਭ ਹੋ। ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਦ ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਸੁਣਦੇ ਸਭ ਕੁਛ ਸੁਣਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਣਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਗਗਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਸਭ ਕੁਛ ਉਸ ਸੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਰੰਗ ਰੂਪ ਕੇਵਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਕੁਛ ਉਸ ਖਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਕੁਛ ਉਸ ਸੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਸੁਣਨ, ਬਾਹਰ ਸੁਣਨ, ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਸੁਣਨ ਸੁਣਨ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ। ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੁਣ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਸੁਣ ਹੈ, ਸਮੂਹ ਤ੍ਰੈ ਲੋਕ ਸੁਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਸੁਣ ਸਮਾਦ ਅਨਹਦ ਤੈ ਨਾਮ, ਕਹਿ ਨਾ ਜਾਈ ਅਚਰਜ ਵਿਸਮਾ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰੰਗ ਰੂਪ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਚੱਕਰ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਤੇ ਆਪੇ ਖਲਾ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ।